शांति, ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और विशेष इसी उपलक्ष्य में हैदराबाद से डॉक्टर पी रघुराम जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए। और उनके लिए आज एक विशेष दिन भी है, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में महिलाएं इसको अटेंड करेंगी तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो आपसे निवेदन है, सभी जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर ले, और जो भाई भी उसको अटेंड करना चाहते हैं वो भी अंदर आकर अपना स्थान ले सकते हैं। और मैं अभी आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं को, भ्राता डॉक्टर पी रघुराम जी जो हैदराबाद से पधारे हैं, आप फाउंडिंग डायरेक्टर किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीजेस हैं, भ्राता डॉक्टर प्रताप मेधा जी डायरेक्टर जे वॉटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कृपया मंच पर पधारे, डॉक्टर बनारसी भाई जी डायरेक्टर एवर एनबी हॉस्पिटल शांतिवन, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, भ्राता मृत्युंजय जी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आए। ब्रदर ऋषिनाथ जी से भी अनुरोध है कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक हैं। ब्रदर ऋषिनाथ जी आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अगर वर्तमान समय में देखें, महिलाओं में स्तन कैंसर के केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं और एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्रतिवर्ष 1,70,000 नई महिलाएं स्तन कैंसर से ग्रसित हो जाती हैं और प्रति 28 में से एक महिला को स्तन कैंसर होता है। तो ये बीमारी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि जागरूकता है और इसे अगर हम अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका निदान सहज होता है और मृत्यु की संभावना भी नहीं के बराबर रह जाती है। तो ऐसे डॉक्टर साहब जो हैं वो पूरा विस्तार से इसके बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं। जो भी बहनें पट पर बैठी हैं वो भी कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, सामने कुर्सियां लगी हुई हैं उन कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें, कोई भी पट पर नहीं बैठे। भाइयों से भी अनुरोध है जो पट पर बैठे हैं वो कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ले लें। हमारी सभी बहनें अभी हॉल में पहुंच रहे हैं, तो जब तक सभी पहुंचे तब तक हम हमारी आदरणीय कुलदीप बहन जी, जो हैदराबाद शांति सरोवर के डायरेक्टर हैं, हैदराबाद सब जोन की भी आप संचालिका हैं, आपने अपना एक अनुभव का वीडियो हमारे साथ शेयर किया है, क्योंकि आपने स्तन कैंसर पर विजय पाई है और डॉक्टर पी रघुराम जी ने ही आपका इलाज किया है। तो तब तक हम वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनेंगे। अभी कुछ ही समय में आप आदरणीय कुलदीप बहन जी का वीडियो आप सभी के सामने प्ले किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में तो ये केसेस है ही हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ये केसेस हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, अभी प्रेजेंट में भी हमारी कई बहनें जो हैं इस बीमारी का शिकार हुई है। तो जरूरी है कि सभी के अंदर ये अवेयरनेस हो, उनको उनके लक्षण पता हो कि किस तरह से ये बीमारी प्रकट होती है और फिर क्या इसकी रोकथाम हो सकती है और कितना जल्दी और कितना सहज इसका उपचार हम कराएं, ताकि इस बीमारी से हम समय रहते अपना बचाव करते हुए इससे सुरक्षित रह सकें। और जो भी हमारी माताएं बहनें बाहर हैं, कृपया जल्दी से जल्दी हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जब तक 5000 की संख्या हॉल में नहीं आ जाएगी तब तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। और आपकी एक गेट पर स्कैनिंग की जा रही है, स्कैनर आपके हाथ पर लगाया जा रहा है, तो वो काउंट है कि कितनी संख्या में यहाँ हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। डॉक्टर पी रघुराम जी जो हैदराबाद से पधारे हैं, आप एक विश्व प्रसिद्ध सर्जन हैं और आप किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीजेस, किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद के संस्थापक हैं और ये दक्षिण एशिया का पहला समर्पित एवं व्यापक स्तन स्वास्थ्य केंद्र है, यानी विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही ये फोकस्ड हॉस्पिटल है। और इसके अलावा आप उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 18 वर्षों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्तन कैंसर जागरूकता और रोकथाम से जुड़ी हुई नवीन पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपके इंट्रोडक्शन का एक वीडियो भी है, वो भी आपके सामने प्ले किया जाएगा। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर साहब से, कृपया मंच पर आए,
सर्वप्रथम आज सभी को ओम शांति।
तब तक वीडियो प्ले होगा।
सर्वप्रथम आज सभी ओम शांति। सर्वप्रथम आज सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं महिला दिवस पर वहां मैं आई भी थी, लेकिन किसी कारण से मुझे हैदराबाद वापस आना पड़ा, क्योंकि हमारी एक बहन ने शरीर छोड़ा। नहीं तो मैं इस इवेंट में वहां ही अपना अनुभव सुनाना चाहती थी। एक वर्ष पूर्व मार्च मास में ही हमारे जोन का, महाराष्ट्र जोन के साथ आंध्रा और तेलंगाना का सेवा का टर्न होता है, उसमें जाने से पहले एक दिन मुझे बाबा ने अमृत वेले टचिंग दिया, बच्ची जाने से पहले थोड़ा शरीर की चेकिंग करा कर जाना, और यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है AIG, जिसमें नागेश्वर रेड्डी जी एशिया के नंबर वन डॉक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे 2 दिन एडमिट करके कुछ टेस्ट किए थे, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन के बाद कुछ और एक प्रोग्राम था हैदराबाद में, जिसमें सब बहुत से विशेष महारथी और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी आने वाले थे। मैंने कहा मुझे जाना होगा, इसलिए डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि आपके टेस्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो 1 दिन और दे दीजिए, मैं आपको सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भेज दूंगा। तो सारे टेस्ट उन्होंने खुद खड़े होकर हर डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए लगभग 6 घंटे तक मेरी हर डिपार्टमेंट के हर डॉक्टर जो है, हर ऑर्गन का स्पेशलिस्ट बुला करके उन्होंने सिर से पैर तक सब कुछ टेस्ट किया। उसमें जब उन्होंने टेस्ट किया था ब्रेस्ट के लिए, और उस समय उनको पता तो चल गया था कि कैंसर है, लेकिन मेरी उस समय पर बायोप्सी करने के लिए फीमेल डॉक्टर जो है वो छुट्टी पर थी, तो मैंने कहा मैं मंगलवार जा रही, अगर सोमवार को आप बुला लो तो मैं टेस्ट करा लूंगी। फिर उन्होंने बताया 5 दिन में आपका टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा। तो खुशी से मैं बाबा से मिलन मना कर, फिर मीटिंग में कुछ गैप था तो मैंने सोचा मैं थोड़े दिन नेचुरोपैथी हॉस्पिटल अंकलेश्वर में जा करके मैं अपना ट्रीटमेंट थोड़ा करा लेती हूँ। तो आबू रोड में ही मेरे को मैसेज आ गया कि आपको कैंसर है। फिर मैंने डॉक्टर कविता को पूछा तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाइए। फिर मैं वापस शांतिवन आई, क्योंकि मैंने 4 धाम की यात्रा नहीं की थी, वो करके फिर मैं जब वापस आई तो उन्होंने, नागेश्वर रेड्डी ने कहा कि मैं कुछ सर्जन से बात करता हूँ। 1-2 सर्जन को फोन लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर उनको रघुराम जी की स्मृति आई कि वो तो ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और यूके में उनका पूरा सेटअप था, लेकिन उनकी माता जी को कैंसर आने के कारण वो यूके से हैदराबाद शिफ्ट हो गए, और पूरी डॉक्टर फैमिली है। इनकी मदर भी गायनेकोलॉजिस्ट थी और इनकी वाइफ भी डॉक्टर है और खुद भी ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशल सर्जन है और बहुत नम्र चित्त है। जब हम गए तो हमारी बहनें थोड़ी मायूस थी, तो मुझे तो नागेश्वर रेड्डी जी ने बोला आपको कैंसर है, डरना नहीं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं राजयोगी हूँ और कैंसर क्या कोई भी चीज से डेथ तो एक दिन होना ही है, मैं इसको अंदर से स्वीकार नहीं कर रही हूँ, होगा कैंसर, लेकिन मेरे माइंड से मैंने कैंसर को कैंसिल कर दिया। फिर डॉक्टर साहब बोले आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये बहने ऐसा क्यों है, पेशेंट कौन है? तो मैंने कहा मैं, आप तो मुस्कुरा रहे हो। तो मैंने कहा इनको थोड़ा बड़ी दीदी के लिए प्यार है ना, तो इसलिए वो लोगों को चिंता है। लेकिन उन्होंने मुझे पहले टैबलेट से सोचा, क्योंकि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने कहा इनके लीवर थोड़ा कमजोर है तो इनको ज्यादा कीमो नहीं देना, टैबलेट से मैनेज करना। तो थोड़े हार्मोन्स की टैबलेट से देखा और मेरा जो टेस्ट हुआ उसमें मुझे कविता डॉक्टर ने बताया कि आपको सेकेंड स्टेज है। लेकिन जब रघुराम जी से मिले, इनका हाथ ही सब कुछ MRI CT स्कैन सब कर देता है, उन्होंने कहा कि आप लकी हैं कि आपकी चेस्ट वॉल को चिपका हुआ है और बहुत बड़ी गांठ नहीं है, भले वो 2 साल का है परंतु वो कहीं जा नहीं सका, वरना ये एग्रेसिव कैंसर था और बहुत पेनफुल कैंसर है, आप कैसे पेन को इतना सहन कर सक रहे। मैंने कहा मुझे तो शरीर में बहुत सी दर्द है, उसमें एक बूंद और आ गया तो मुझे पता नहीं चलता है। तो उनको बहुत खुशी हुई कि इतना विल पावर वाली बहन मेरे पास आई है। फिर देखा उससे नहीं हुआ तो फिर कीमो लेने के लिए कहा, तो 4 कीमो से ही मुझे बहुत साइड इफेक्ट हुए। तो फिर मैंने कहा आप सर्जरी कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने, रघुराम जी ने कहा कि सर्जरी भी 2 करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो चेस्ट वॉल से अभी तक चिपका हुआ है तो हमें वो काटना पड़ेगा और पीछे से आपके मसल को लगाना है, तो प्लास्टिक सर्जन भी रेडी है और आपकी 2 सर्जरी होंगी और मेजर सर्जरी है 5 घंटे की। लेकिन मैंने निश्चय बुद्धि होकर कहा कि मेरे पास छोटा सा शिव बाबा का बैज लगा हुआ था और राखी का सीजन था, 7 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने राखी भी बांधी हुई थी, तो मैंने कहा ये इसमें शिव बाबा मेरा रक्षा सूत्र है, इसको भी नहीं निकालना और मेरा बैज नहीं निकालना, ये सुप्रीम सर्जन मेरी सर्जरी करेंगे और आप असिस्ट करना। नर्सेस बोल रही थी मेटल को हम नहीं ले जाने देते हैं हाथ में, तो डॉक्टर साहब बोले नहीं उनकी भावना को मत तोड़ो, आप टेप लगा दो ट्रांसपेरेंट। और उनको ये निश्चय था कि इनके बोलने से क्या, ये तो प्लास्टिक सर्जन का काम करना ही पड़ेगा और 2 होंगी ही, तो बार बार बोल रहे थे। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, आप बहुत पेशेंट्स को देखे होंगे लेकिन आज मेरे बाबा का मिराकल देखना कि वो अपने आप आपको इतना इजीली गाइड करेंगे कैसे करना, एक ही सर्जरी होगी। तो उनको इतना लगा, इतनी कॉन्फिडेंट है, इनका कितना विश्वास है अपने बाबा में, भगवान में, तो जरूर सक्सेसफुल होगा। और फिर जैसे ही मेरी सर्जरी हुई तो मैं होश में आने के बाद बोला कुलदीप जी आपका तो बहुत बाबा मिराकल दिखाता है, सिर्फ 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे खींचने में लेकिन सक्सेसफुली आपकी कैंसर की सर्जरी हो गई है। लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे बातचीत कर रही थी तो उनको बहुत वंडर लगा, सबके खाने का भी ध्यान रख रही है। संतोष दीदी भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी बहुत हिम्मत दी, लेकिन परमात्मा की हिम्मत और उन्होंने दिया हुआ जो योग बल से मुझ में मनोबल भरा था बाबा ने, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोची कि मैं अपने जीवन से हार जाऊंगी, मुझे विजयी बनकर अपनी विजय की पताका लहराना है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये मेरे मन में भाव था। जैसे गुलजार दादी ने हॉस्पिटल में सेवा की, अनेकों की डॉक्टर्स की भी सेवा हुई और हॉस्पिटल बना, तो मुझ आत्मा से भी बाबा कुछ ऐसा कार्य कराए जो बाबा का नाम बाला हो जाए, और मैं यही कहूंगी कि सभी राज्यों का अभ्यास करें, अपने मनोबल को बढ़ाएं और दूसरों के दुख दूर करना अपने मन में। अगर कोई भी मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ मेरी ऐसी मिस्टेक कुछ है या मैंने कभी भी किसी को भूले चुके दुख दिया हो, तो मैं हर एक आत्मा को क्षमा दान और अपने को भी ऐसे हल्का कर रही थी कि जो हुआ जो भी बीता है उसको मैं बिंदी लगाकर मुझे आगे बढ़ना है और परमात्मा प्रत्यक्षता मुझ आत्मा से हो, यही मेरा ध्येय था। बाकी मैं बहनें रोती थी, मुझे कितना भी साइड इफेक्ट हुए, कितनी दर्दनाक मेरी हालत थी, लेकिन मैं हंसते हुए सबको हंसाती भी थी जोक सुना करके कि कुछ भी नहीं है। तो बहनें भी बहुत वंडर खाती थी कि हमारी वंडरफुल दीदी है, खुद की दर्द को पी करके भी हमको कितना खुश कर देती है। तो सदा खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, सबको क्षमा करके अपने मन को हल्का रखेंगे तो परमात्मा अपना कार्य अवश्य करता है। वो मदद भी देता है, सहन करने की शक्ति भी देता है और हमारा मनोबल भी योग से, राज्यों के अभ्यास से दिनों दिन बढ़ता रहता है। मुझसे कोई भी पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत अच्छी, मैं पहले से भी अच्छी हो गई। तो डॉक्टर्स को भी वंडर लगता है, रघुराम जी जब भी पूछते हैं हाउ आर यू, मैं बोलती हूँ डॉक्टर साहब मैं कईयों को तो बोल देती हूँ बेटर देन यू, तो उन्होंने लिख लिया कि मैं और पेशेंट्स को भी सिखाऊंगा कि ऐसे ही बोलना चाहिए कि हम तो बेहतर हैं, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। और अच्छा अच्छा कहते कहते बाबा ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, कोई भी मेरे लिए अभी सोचना नहीं, मेरा कैंसर तो कैंसिल हो गया और मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ क्योंकि मेरी डाइट नेचुरोपैथी सभी डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया कि आप इसीलिए बचे रहे, कैंसर फैला नहीं, क्योंकि मुझे कैंसर नेचुरोपैथी में जाने से पहले हुआ था और वो कैंसर भी नेचुरोपैथी के कारण, और मेरा लीवर भी डॉक्टर अब भी देख करके कहता है 2 साल से आपका लीवर का कंडीशन जैसा था एज इट इज है, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने मुझ आत्मा को इस जीवन में नई नई सेवाएं करने के लिए इस शरीर में पुनः मुझे नया जन्म देकर बाबा ने भेजा है। ओम शांति। और रघुराम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, उन्होंने मुझे फिर से नया जीवन देने का ये वरदान दिया है। ओम शांति।
ओम। तो बहुत सुंदर और अद्भुत अनुभव अभी हमने आदरणीय कुलदीप बहन जी का सुना कि कैसे उन्होंने हिम्मत रखी और अपने मन में जरा भी निराशा नहीं आने दी बीमारी को लेकर के, और उस आधार पर बाबा की मदद मिली उनको और वो कैंसर जैसी इस बीमारी पर विजयी हो गए। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारी बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से, कि वो मंच पर आसीन हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रताप भाई जी, बनासी भाई जी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व, जैसे हमारे विद्यालय की परंपरा है कि हम प्रभु स्मृति से ही कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, तो 1 मिनट हम परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे।
Yeah.
सरिता बहन जी और मनीषा बहन से अनुरोध है कि हमारे मंचासीन अतिथियों का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी तालियों का सहयोग देंगे डॉक्टर रघुराम जी, डॉक्टर प्रताप मिधा जी, डॉक्टर बनारसी भाई जी, और अभी हम हमारे परम श्रद्धे आदरणीय डॉक्टर रघुराम जी, जो प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं और किम्स हॉस्पिटल और उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट केयर सेंटर के आप संस्थापक हैं, आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो दिखाया जाएगा और उसके बाद हम आपसे सुनेंगे कि कैसे इस बीमारी को हम पहचाने, कैसे हम इसकी रोकथाम करें, इससे बचाव किया जा सकता है और क्या इसका इलाज है। बहुत विस्तार से आप हमारे समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आपके लिए मैं कहूंगी, आंखों में गर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में गर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और लगन में अगर जान है तो सफलता आपसे दूर नहीं। आपके अथक प्रयासों से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, अपने प्रयासों में आप सफल रहे हैं। डॉक्टर रघुराम जी,
today we honor a man who is among the foremost surgeons in the Asia Pacific region, Dr. Raghuram Pillarisetty. Dr. Raghuram has revolutionized breast cancer care in India through a series of innovative measures. This disease ranks as the number one cancer among Indian women, with around 1 in 22 women affected, half of whom will die from the disease. Dr. Raghuram implemented South Asia's largest population-based screening program in the southern Indian states of Telangana and Andhra Pradesh. This program is currently being rolled out nationwide through the Government of India's National Health Mission. Dr. Raghuram developed the world's first breast health mobile phone app in English and 11 commonly spoken Indian languages. Dr. Raghuram conceived, designed and established South Asia's first purpose-built comprehensive breast health center. In an earnest endeavor to standardize breast health care in the country, he played a pivotal role in formation of the Association of Breast Surgeons of India, thus bringing together surgeons practicing breast surgery under one platform. Dr. Raghuram adopted a remote village in the southern Indian state of Telangana, Ibrahimpur, where he has been providing life-changing equipment and facilities through his personal philanthropy. He is one of the youngest surgeons elected to have served as president of the Association of Surgeons of India for the year 2020. In recognition of his outstanding academic track record, innovative initiatives that have transformed breast health care in India, and life-transforming philanthropy in his adopted village, Dr. Raghuram was conferred the prestigious Padma Shri by the Honorable President of India. Dr. Raghuram is also one of the youngest surgeons to be conferred Dr. B.C. Roy National Award by the Honorable President of India, which is the highest recognition that can be achieved by a doctor practicing medicine in India. He is a fellow of the American College of Surgeons and all four Royal Colleges in the British Isles, Edinburgh, England, Glasgow and Ireland. He was conferred honorary FRCS by the Royal College of Surgeons of Thailand, Sri Lanka and Chinese College of Surgeons. Dr. Raghuram achieved the rare distinction of becoming one of the youngest surgeons of Indian origin in over 100 years to be honored with an OBE, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Ladies and gentlemen, Dr. Raghuram Pillarisetty.
अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में प्रकट करेंगे डॉक्टर प्रताप जी.
ओम शांति. हमें आज अपने बीच डॉक्टर रघुराम को पाकर बहुत खुशी हो रही है. जो कार्य वो शुरू आज हमारे से बातचीत करने वाले हैं, उन्होंने ये कार्य काफी वर्ष पहले शुरू किया था. विदेश से आकर एक ये क्रांति शुरू की थी और आज जो हम देख रहे हैं वो सबसे बड़ा कार्य है, सबको अवेयरनेस देना. इसी के लिए हम लोगों ने भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने और ग्लोबल हॉस्पिटल ने मिलकर यहाँ शांतिवन के पास ही एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर शुरू किया है. वो सितंबर में शुरू किया था और उसका अभिप्राय यही था जो आज हमारे से डॉक्टर रघु रेड्डी बात करने जा रहे हैं. वो डॉक्टर अशोक मेहता का इनिशिएटिव था क्योंकि हमारी बहनें प्रातः भारत में ये होता है कि बहुत शाई महसूस करती हैं, बात नहीं करती हैं. तो इसलिए स्क्रीनिंग सेंटर का अभिप्राय ये है कि हर 2 साल में सभी बहनों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मैंडेटरी करेंगे. तो इसमें सारा स्टाफ भी बहने ही हैं, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर सब बहने हैं, ताकि बहने उसको बिना किसी झिझक के उस सेंटर का प्रयोग कर सकें. और ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम सुन रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है और खासतौर पर हमारी बहनें जो ब्रह्मचारिणी हैं, सिंगल हैं, उनमें इसका खतरा और भी बन जाता है. तो इसलिए ये जरूरी है कि सबसे बड़ा जो कार्य है वो है अवेयरनेस का, जिसको हम जागरूकता कहते हैं, कि लोगों को पता लगे कि इस ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या मुश्किलें होती हैं, कैसे उसको जल्दी डायग्नोज किया जाए. क्योंकि मैं ये समझता हूँ जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोज कर पाएंगे उतना सुरक्षित हमारी बहनें रहेंगी. इसलिए स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया है. मुझे याद है बहुत साल पहले हमारे बड़े बहन जी थे, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा इशारा दिया. डॉक्टर अशोक मेहता ये यहाँ थे, हमने FNAC की, उनकी सर्जरी भी एक दिन के अंदर हो गई एंड देन शी रिमेन जब तक रहे बिल्कुल सेफ रहे. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस से हम कैंसर का डायग्नोसिस जब वो छोटे रूप में होता है तब हम उसका कर सकते हैं। जैसे कोई भी समस्या, जैसे कहते हैं आग भी जब थोड़ी होती है तो उसको बुझाना सहज होता है, ऐसे ही कैंसर का भी है। अगर जल्दी से हम उसको पकड़ लेते हैं और उसका सुरक्षित डायग्नोस कर लेते हैं, और ये भी सोचने की बात है कि जरूरी नहीं है कि सभी गांठें कैंसर होती हैं, लेकिन हमारे लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जहां अवेयरनेस है, यहां पर इस सेंटर में थर्मोलिटिक कैमराज भी हैं, मैमोग्राफी भी है, सोनोग्राफी भी है, और साथ में FNSA की सुविधा भी है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो कैंपेन शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने सितंबर में शुरू किया और डॉक्टर रघुराम ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो आकर बहनों को इतने बड़े समूह के रूप में संबोधित करेंगे। और ये प्रिवेंटेबल भी है, अगर अवेयरनेस होती है तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। वो डॉक्टर रघुराम हमें बताएंगे कि क्या लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और जल्दी अगर स्क्रीनिंग करते हैं और जल्दी अवेयरनेस होती है तो फिर जल्दी डायग्नोस से उसको मैनेज भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो इन्होंने कार्य शुरू किया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उसकी सराहना करता है, उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी बहनों की, लगभग 30-40 हज़ार हमारी बहनें जो समर्पित हैं, उनकी हम 2 वर्ष में पूरी स्क्रीनिंग एक बार कर पाएं और फिर हर 2 वर्ष में स्क्रीनिंग होती रहे। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि बीमारी को पकड़ना और जल्दी इलाज करना ये महत्वपूर्ण है। और आप सब अवेयर हैं, लेकिन भारत में कितनी महिलाएं हैं जिनको इसकी अवेयरनेस भी नहीं है, जिसको इनकी जानकारी भी नहीं है। तो डॉक्टर रघुराम ने जो मीडिया के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, मैराथन्स के द्वारा जो कार्य शुरू किया है, तो मुझे लगता है वो बहुत बहुत ऊंच कोटि का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम उस कार्य को मिलकर बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को और अपनी बहनों को अवेयरनेस मिले। और हम ये समझते हैं ये समाज में एक बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा। वैसे तो सभी जो कितनी भी इलनेसेस हैं वो सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, तो ये भी कैंसर्स भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारा वैसे तो देखा जाए, हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये है कि हम अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और एक्यूरेट रहें, ताकि हम उसको मैनेज कर पाएं। तो आपके सहयोग से, डॉक्टर रघुराम के सहयोग से और आप सभी बहनों के सहयोग से, मुझे लगता है इस बीमारी के प्रति हम जागरूक होंगे और इस बीमारी पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, ताकि हम सदा स्वस्थ रहें और ईश्वरीय सेवा में अपना योगदान और भी पूरी ताकत से दें। क्योंकि ईश्वरीय सेवा में आप बहनें ही अग्रणी हैं, आप बहनों के द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। क्योंकि जैसे बाबा भी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति रह नहीं जाए जिसको ईश्वर का संदेश नहीं मिले, जिसको अपना परिचय नहीं मिले। और हमारे परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सबके मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता हैं, उनका संदेश नहीं मिले। तो इस संदेश के लिए, इस ईश्वरीय सेवा के लिए ये डॉक्टर रघु रेड्डी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा कि हमारी बहनें स्वस्थ रहें और अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें और ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाते रहें। तो आज के दिन, आज तो विशेष दिन है, इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो आज का इनिशिएटिव तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं डॉक्टर रघु रेड्डी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनको शुभेच्छा देता हूँ। जो इनका ये कार्य है वो हम सब सराहते हैं, और ये साधुवाद है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी यूं कहें इनिशिएटिव का उन्होंने ये लिया, हमारे पास आए। और कुलदीप बहन से भी आपने सुना कैसे पूरी एक्यूरेटली उनका इलाज किया और कैसे वो आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हम सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज का जो मेडिकल विंग है राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं।
धन्यवाद प्रताप भाई जी का। और एक विशेष जानकारी जो सभी के लिए आपने दी कि ग्लोबल हॉस्पिटल के कनेक्शन में भी यहाँ शांतिवन के पास ही गोवर्धन मोदी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पर अपनी बहनों की स्क्रीनिंग के लिए ब्रेस्ट कैंसर सेंटर स्थापित किया गया है। तो जैसे कहा कि समय से पहले या जितना जल्दी हो सके इसकी जो पहचान हो जाती है वो उसके उपचार के लिए और इस बीमारी को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसका पूरा लाभ हमारी बहनें उठाएं, ये अपेक्षा है। और अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ परम आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी से। आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर हैं, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के भी आप मेंबर हैं। 50 से भी अधिक वर्षों से आप समर्पित रूप से विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और महत्वपूर्ण योगदान है आपका कि अनेक यूनिवर्सिटीज के साथ आपने वैल्यू एजुकेशन के लिए MOU किया है, जिससे कि यंग जनरेशन को, विद्यार्थियों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जा सके। तो आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रकट करेंगे आदरणीय मृत्युंजय भाई। आपके लिए मैं कहूंगी, जमी सलाम करे, आसमान सलाम करे, आपकी सेवाओं को तो देखकर खुद खुदा भी सलाम करे।
ओम शांति। आपका आवाज सारी कैंपस में गूंजना चाहिए। अभी दो बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, आप भी सभी रिपीट करें। ओम शांति, ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में, विशेष करके माउंट अबू डायमंड हॉल में आज डॉक्टर रघुराम जी हमारा सम्मुख में उपस्थित है, कैंसर स्पेशलिस्ट। इनको भारत सरकार ने अभी हमने सुना पद्मश्री अवार्ड देकर के सम्मानित किया, इससे तो बड़ा गौरव क्या हो सकता है। इनको सर्जरी में बीसी राय अवार्ड देकर के सम्मानित किया, इससे भी बड़ा गौरव क्या हो सकता है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, उनसे भी इन्होंने सम्मानित किया, क्योंकि इनको यंग एज में इन्होंने डॉक्टर बने, सर्जन बने और देश विदेशों में जाकर के सेवा किया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और भले ताली बजाओ अच्छी जोर से। मुझे थोड़े दिन पहले ही आपका संपर्क में आया हमारा आदरणीय कुलदीप, मैंने इंट्रोड्यूस किया। इनका एक विचार था, क्योंकि हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय महिला नेतृत्व का संस्था है, विश्वविद्यालय है, एक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए दिशा निर्देश देने वाले संस्था है और नारी शक्ति को देश विदेशों में विश्व को परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा साकार माध्यम के माध्यम द्वारा यूज कर रहे बहनों को, इसके लिए इससे भी बड़ा श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ दिवस, श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहीं नहीं मिल सकता इसी कार्य के लिए। क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो समाज है, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ ही नहीं तो क्या हो सकता है। इसके लिए बिस्तर पर बैठ करके काम नहीं कर सकता, हेल्थ का वैल्यू आप सभी जानते हैं। इसके लिए एक छोटा सा बीमारी हो गया तो कितने, कैंसर जैसा महाबीमारी आजकल सब जगह में, क्योंकि स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है और साथ साथ में आहार में अनेक केमिकल्स यूज करते हैं। हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, एक टमाटर चाहे कोई भी वेजिटेबल्स हो, इसमें भी केमिकल्स होते हैं। ऐसे समय पर डॉक्टर की हेल्प, डॉक्टर की मदद, डॉक्टर की शिक्षा, डॉक्टर की अवेयरनेस कम से कम हम सबको जरूरत है। इस दृष्टिकोण से मैंने भी कहा भाई साहब आप आइए, सबको शिक्षा दें, सबको अवेयरनेस प्रदान करें, इस बात के लिए उन्होंने अग्री करके आए। ये केवल उनकी ने हमारा भी इच्छा है कि कार्य आगे बढ़ना, आगे ले जाना देश में। ये कार्य पवित्र कार्य है, शांति का कार्य है, शिक्षा का कार्य है और समाज सुधारने का कार्य है, स्वास्थ्य का कार्य है, ये देश की प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य का कार्य है। ऐसी कर्तव्य उनको करने के लिए सदा प्रण होना चाहिए, प्रतिज्ञा होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ जो भी भाई बहने बाहर खड़े हैं, घूम रहे हैं, इस कैंपस के अंदर घूम रहे हैं और खिड़की के दरवाजे के बाहर बैठे हैं, उधर बैठने के बजाय इधर हाल में आकर के बैठे। अभी 5-6 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम शुरू करेंगे और बाद में आप मिस करेंगे। आप इतनी महत्वपूर्ण बातें आप सुनने को पैसा दे करके भी नहीं मिलता है। एक एक बीमारी के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। आपको पहले ही आपको ये अवेयरनेस मिल रहा है, इसके लिए आप इसका वैल्यू रखिए, डॉक्टर का वैल्यू रखिए, समय की वैल्यू रखिए, शिक्षा का वैल्यू रखिए और ईश्वरी विश्वविद्यालय का गरिमा को देखते हुए आप सब भी भाई बहने जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं अच्छी बात है, परंतु इधर आकर के बैठ जाए, जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू करिए। मैं विश्वास है आप सबके सहयोग से एक नया आंदोलन, क्रांतिकारी कार्य, एक सेवा में अद्वितीय सेवा और विश्व में रिकॉर्ड करने का सेवा होगा। ऐसी सेवा के लिए हम सभी आगे अग्रदूत बनकर के आवेंगे। ऐसे तरह में सहयोग करने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ 3 बार ओम शांति करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू भाई साहब, आपने महिला दिवस के विशेष अवसर पर डॉक्टर साहब को निमंत्रण दिया। डॉक्टर रघुराम जी उस कारण ही आज हमारे बीच में हैं और इतना वैल्यूबल समय निकाल करके हमारे बीच पधारे हैं ये अवेयरनेस हमारी सभी बहनों के लिए लाने के लिए। तो जिन पलों का हमें इंतज़ार था वो अब इंतज़ार समाप्त हो गया है और आप हमारे समक्ष अपना वक्तव्य देने वाले हैं डॉक्टर पी रघुराम जी।
शुरू करने से पहले मैं सारे जो स्टीवर्ड्स है, वॉलंटियर्स है, जो काउंटिंग टीम में लगे हैं, वो सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो काउंटिंग बंद कर दे और अपनी अपनी जगह पे आ जाए, अंदर आ जाए, अपना अपना पोजीशन ले ले ताकि हम अटेम्प्ट शुरू कर पाए। सारे स्टीवर्ड्स, सारे काउंटिंग स्टीवर्ड्स अभी काउंटिंग बंद कर दीजिए और अंदर आके अपनी अपनी जगह पे पोजीशन ले लीजिए ताकि हम अटेम्प्ट शुरू कर पाए।
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rishinath. I am the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. Today, we have a record attempt for the largest breast cancer awareness, and this has been attempted by the Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation, KIMS Usha Lakshmi Center for Breast Diseases and Brahma Kumaris, and the lesson is being delivered by Dr. Raghuram here. And we have very strict guidelines. One of the major guidelines is that everyone should remain in their seats, in their positions, without going out or answering their mobile phones. So I just request everyone to be very attentive while the lesson is ongoing. And all the best to everyone. Dr. Raghuram, please take that. नमस्कार आज याना अंतर्जातीय महिला दिवस है बल्कि 1975 में शुरू हुए अंतर्जातीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी है हर शुरुआत एक कहानी से होता है और मेरी कहानी भी एक असली कहानी शुरू हुई जब मेरे मां को स्तन कैंसर निदान हुआ था 23 इयर्स पहले 2002 में मनोधैर्य से आत्मविश्वास से उन्होंने कैंसर को जीत लिया है और करीब 20 साल से मां ने यहां हमारे देश में कैंसर जागरूकता के आंदोलन के पीछे एक प्रेरक शक्ति और प्रेरणा रही है इसीलिए मैं ये अवेयरनेस सेशन को मेरे मां को अंकित करता हूं और उनके आशीर्वाद लेते हुए ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं आप अभी देखे हैं कुलदीप दीदी जो ब्रह्म कुमारीज के हैदराबाद सब सेंटर के प्रमुख हैं उन्होंने भी स्तन कैंसर को जीत लिया है आत्मविश्वास से और धैर्य से और मुझे उनके ट्रीटमेंट में शामिल होने का मौका मिला था ऑपरेशन के बाद हमारे बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में मैं यहां आऊं और स्तन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहता हूं जब से अब तक कॉन्सेप्ट से क्रिएशन और इंप्लीमेंटेशन तक एक व्यक्ति अगर मेरे पीछे थे वो है डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप इनको जानते हैं पूरा देश इनको जानता है और ये शिवानी दीदी है जो हमारे संस्थान को हैदराबाद में आई थी और हमारे कर्मचारियों और मरीजों इनके बात सुनने की और इनके सलाह से मार्गदर्शन पाने की बहुत बहुत एक्चुअली फॉर्चुनेट थे मेरे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के मेन एम्स है स्तन कैंसर कितने लोग में सामने आता है कितने लोग स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं स्तन कैंसर क्यों आता है और स्तन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है ये पहली है दूसरा है स्तन कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथक है ये मिथक को दूर करना मैं कोशिश करूंगा तीसरा है स्तन कैंसर को कैसे निदान करते हैं और स्तन कैंसर को ट्रीट करने के पहले परामर्श करना काउंसलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जो आप कुलदीप दीदी ने ही बताई थी और फोर्थ एम है कैंसर को कैसे स्टेजिंग करते हैं कैंसर को कैसे इलाज करते हैं और फाइनली हम बात करेंगे कैंसर को हम क्या रोक सकते हैं और कैंसर को हम अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे देश में स्तन कैंसर एक सुनामी है हर साल
2 लाख नए कैंसर सामने आते हैं हर 4 मिनट को। कोई ना कोई हमारे देश में स्तन कैंसर डायग्नोसिस होता है। और दुख की बात है कि हर साल 1 लाख महिलाओं स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं। हर 8 मिनट को हमारे देश में कहीं ना कहीं एक महिला को मृत्यु होता है ये स्तन कैंसर से। ये हमारे देश में एक छिपा हुआ मुद्दा है, अवेयरनेस नहीं है और जन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना रोबस्ट नहीं है। और हमारे देश में 70% रूरल एरियास में, विलेजेस में रहते हैं जहां रोबस्ट कैंसर सेंटर्स और फैसिलिटीज नहीं होते हैं। इसके कारण 60% से अधिक संख्या से एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। ये महिला 50 साल की है, पढ़े लिखे घर से आती है, मगर ये छुपा हुआ इश्यू होने के वजह से इतना लेट, आप देख सकते हैं एडवांस स्टेज में आई है। ये मैमोग्राम है उनकी। जब एडवांस स्टेज में महिलाएं आते हैं तो उनको बचाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हमारे हैदराबाद शहर में हर अक्टूबर को अक्टूबर अंतरजातीय कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है और पिंक कलर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं 400 साल चार मीनार जहां बहुत लोग रहते हैं, जहां भीड़ रहता है, वो हम इल्यूमिनेट करते हैं ताकि लोग को समझाना है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। और जो ब्रेस्ट कैंसर हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर को इलाज हुआ है, उनको हम सपोर्ट करते हुए ये बिल्डिंग्स को इल्यूमिनेट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट में, स्तन में कोशिकाएं अगर इन अ डिसऑर्डरली वे अगर विभाजित होते हैं, स्तन कैंसर आने का संभावना है। और स्तन कैंसर टाइप्स क्या है? स्तन में नलिकाएं और लॉब्यूल्स है। नलिकाएं में आने वाले कैंसर को डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ये डक्टल कार्सिनोमा ही होते हैं, मगर माइनॉरिटी ऑफ कैंसर लॉब्यूल्स में शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं लॉब्यूलर कैंसर। इसके अलावा थोड़े स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बहुत एग्रेसिव होता है, पेजेट्स डिसीज ऑफ द निपल, निपल के स्थान में कैंसर आता है, और फिलोइडिस कैंसर भी है। व्हाट कॉजेस ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर क्यों आता है? कोई भी कारण, ईस्ट्रोजन हार्मोन लंबी समय तक जब ब्रेस्ट में इफेक्ट रहता है, जब स्तन कैंसर आने का संभावना है। ये स्तन कैंसर आने के लिए थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है महिला होना। आप सब यहां है, महिलाओं में ही ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है। और जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर आता है, उनको फ्यूचर में भी ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मोटापा होना, पर्टिकुलरली ओबिजिटी मेनोपॉज के बाद। जब मेनोपॉज होता है, ओबिजिटी होता है, ये फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। और मेनोपॉज के बाद अगर लंबी समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनको भी आ सकता है। और जब बच्चे नहीं होते हैं और पहला बच्चा 30 साल के बाद होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब नहीं करते हैं, ये कारण से भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, अनइंटरप्टेड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन होकर स्तन कैंसर आने का संभावना है। और भाई और बहनों, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, ये भी कैंसर को लीड कर सकता है। और जब अर्ली मेनार्की पीरियड 12 साल के पहले शुरू हो या 55 इयर्स के बाद भी स्टॉप नहीं होता है, जब भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हो सकता है। बहुत लोग समझते हैं स्तन कैंसर बुजुर्गों को और मिडिल एज वुमेन को ही होता है, ये गलत है भाई और बहनों। हमारे देश में स्तन कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में 50 साल के बाद बहुत देखते हैं बुजुर्गों में, हमारे देश में 40 टू 50 इयर्स पीक इंसिडेंस होता है और 30s में भी हम बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स को देखते हैं। ये बहुत बड़ा मिथक है कि पारिवारिक इतिहास ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। पारिवारिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है। महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास, महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास यानी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री केवल 5 या 10% लोग को होता है। मुझे बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के रिश्तेदार पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मां को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? मेरे दादी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? ये गलत है। पारिवारिक इतिहास महत्वपूर्ण कब होता है? ये संदर्भ में होता है जब करीब रिश्तेदारों में एक या एक से ज्यादा लोग को स्तन कैंसर 40 साल के अंदर होना, या करीब रिश्तेदारों में दो या दो के ज्यादा रिश्तेदारों को ब्रेस्ट कैंसर आना, या करीब रिश्तेदारों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और अंडाशय कैंसर होना, और पुरुषों में करीब रिश्तेदारों में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास बोलते हैं। जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास होता है, जब उनको ब्राका 1 ब्राका 2 यानी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी से ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। ये कैसे पता चलेगा? एक ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। ये ब्लड टेस्ट करने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक काउंसलिंग, क्योंकि अगर ब्राका टेस्ट पॉजिटिव हुआ फिर उनका लाइफ टाइम रिस्क स्तन कैंसर आने का और अंडाशय कैंसर आने का बहुत बहुत हाई होता है। ये मैनेजमेंट आसान नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जरिए 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर ब्राका 1 ब्राका 2 पॉजिटिव है, बहुत रेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दोनों स्तन को निकाल के अंडाशय को भी निकालना, क्योंकि इनको हाई रिस्क है स्तन कैंसर आने का और ओवेरियन कैंसर आने का, इसीलिए निकालने का एक ऑप्शन है और इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरी। और ये करते हुए वो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिलके स्तन को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लोज सर्वेलेंस, यानी हमारे देश में ये मोर प्रैक्टिकल है क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग नहीं होता है, एक्सपर्ट सेंटर्स नहीं है ज्यादा तक, तो हर साल मैमोग्राम और MRI अल्टरनेट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग 5 साल लेना। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं एंजेलिना जोली, आप पे कोई आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्टर है। इनके मां को, दादी को, चाची को, बहन को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर था और इनका ब्राका टेस्ट पॉजिटिव था, तो उन्होंने दोनों स्तन निकालने का फैसला किया, दोनों अंडाशय निकालने का फैसला किया, उनके लिए बहुत करेक्ट है। मगर और दूसरी अच्छी बात है, इनके वजह से 13 इयर्स बैक ये हुआ, इनके वजह से पूरा वर्ल्ड में ब्राका 1 ब्राका 2 टेस्टिंग के बारे में बहुत लोग जानकारी हुआ। मगर हमारे देश में जहां जेनेटिक सेंटर्स जेनेटिक काउंसलिंग नहीं है इतना ज्यादा, एक्सपर्ट सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्केयर क्रिएट किया है और बहुत लोग अवसर नहीं होते हुए भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को जाकर ब्लड टेस्ट देके जेनेटिक टेस्ट करवा रहे हैं। ये नहीं करवाना चाहिए। मैं आप थोड़े मिथक को दूर करना चाहता हूं। बहुत लोग समझते हैं जब गर्भवती होते हैं स्तन कैंसर नहीं आएगा, ये गलत है। स्तन कैंसर गर्भवतियों में भी आ सकता है, ब्रेस्ट जो है उनमें बहुत लंपी होता है तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्तन कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग करे तो टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं। स्तन कैंसर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करे तो रिस्क रिडक्शन कर सकते, रिस्क कम कर सकते हैं। और कितना ज्यादा लिए, ज्यादा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करे, उनमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर आ सकता है? नहीं। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर नहीं आता है। बहुत लोग समझते हैं कि टाइट ब्रा पहनना, अंडरवेयर ब्रा पहनने से कैंसर आता है। नहीं आता है। डिओडोरेंट्स और एंटी परस्पिरेंट से कैंसर आता है? नहीं आता है। यहां पुरुष है, पुरुष यहां आप सोचते हैं स्तन कैंसर आपको नहीं आएगा? स्तन कैंसर पुरुषों में भी आ सकता है, मगर कॉमन है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, अनकॉमन नहीं है, रेयर है। एक 100 लोग को 100 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो एक 1 out of 100 को मेल्स में, पुरुषों में भी कैंसर आता है। जब मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्ग टर्म अगर लिए, बहुत लंबी समय लिए, रिस्क बहुत बढ़ता है। और जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने के बाद ये रिस्क कम हो जाता है। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स, सो बर्थ नियंत्रण पिल्स कैंसर को लीड कर सकता है? रिस्क बहुत छोटा है और रिस्क जो है स्टॉप हो जाता है जब पिल को स्टॉप करते हैं। ये इतने सारे मैं मिथक बोला है। अगर रिस्क फैक्टर है मिथक, ये रिस्क फैक्टर बोले तो मैं जो बोला है अब तक, अगर रिस्क फैक्टर है तो कैंसर आ जाएगा? नहीं। अगर रिस्क फैक्टर है तो भी कैंसर कभी भी नहीं आ सकता है, आ सकता है, मगर रिस्क फैक्टर जब होता है कैंसर आने का संभावना ज्यादा है। यह आप देख सकते हैं, शानदार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है तेलंगाना में, मेरे ख्याल से देश में यह सबसे सुंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है। अब मैं बताना चाहता हूं कि स्तन का आत्म परीक्षा, सेल्फ एग्जामिनेशन और स्तन का जागृति क्या एक ही है? नहीं। स्तन के एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, एक महीने में एक विशेष समय में महिलाओं को डिफरेंट पोजीशंस में एग्जामिन करने के लिए सिखाते हैं। भाई और बहनों, ये कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दिया गया है पूरा प्रपंच में। अभी कॉन्सेप्ट है ब्रेस्ट अवेयरनेस का, स्तन के जागृति का। और ये स्तन का जागृति क्या होता है, आपके स्तन कैसे फील होते हैं थ्रू आउट द मंथ देखना चाहिए। जब साबुन लगाते समय या क्रीम लगाते समय एवरी डे आपके ब्रेस्ट को अवेयर रहना चाहिए। कौन से चेंजेस को आप अवेयर रहना चाहिए? अगर स्तन में कोई दर्द के बिना गांठ हो, या स्तन साइज सडनली बढ़ जाता है, या स्तन के आकृति में, आकार में कुछ चेंजेस आते हैं, स्तन के कलर को अगर कोई चेंजेस आते हैं, स्तन में निप्पल में अंदर जाना या निप्पल के सराउंडिंग एरियाज में कुछ रैश आना या स्तन से कोई ब्लड निकलना, ये अगर होता है बहनों, आप निर्लक्ष नहीं करना चाहिए और आप डॉक्टर को जरूर टाइम डिले नहीं होते हुए संप्रदित करना चाहिए। तो ये ब्रेस्ट अवेयरनेस स्तन जागृति का 5-point कोड है। क्या है? आपको पता चलना है कि आपको नॉर्मल क्या है, पहला। दूसरा, आपको चेंजेस को देखना है, फील भी करना है हर दिन। Third, look and feel. Fourth, अगर कोई changes हो तो आप निर्लक्ष नहीं करना, डॉक्टर को संप्रदित करना. और five, very important, 40 साल अगर हो, बहनों 40 साल अगर हो, हर साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना है. ये बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू है हैदराबाद में, हुसैन सागर लेक में, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को सेपरेट करती है, ये इल्यूमिनेट हुआ है. अब ब्रेस्ट कैंसर को कैसे निदान करते हैं, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट. एक, डॉक्टर मरीज से बात करके एग्जामिनेशन करना, नंबर वन. नंबर दो, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड स्कैन करना. और तीन, अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए कोर नीडल बायोप्सी करना, FNAC नहीं, कोर नीडल बायोप्सी. क्यों करते हैं ट्रिपल असेसमेंट? क्योंकि अगर 10 महिलाओं को स्तन में कोई प्रॉब्लम है, 9 महिलाओं को कैंसर नहीं होता है, एक ही को होता है. सो किसको स्तन कैंसर है, किसको नहीं है, ऑपरेशन नहीं करते हुए डायग्नोसिस के लिए ये ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ट्रिपल असेसमेंट केवल मैं सर्जन नहीं कर सकता हूं, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा डॉक्टर को स्टेथोस्कोप इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट डिसीज को ट्रीट करने वाले सर्जन को एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट चाहिए और एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट चाहिए. सो हम देखते हैं कि ट्रिपल असेसमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है. ये देखिए, ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बात नहीं करने दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं. और पेशेंट देखिए कहां बैठी है, वो एज ऑफ द चेयर में बैठी है, उन्हों बात नहीं कर सकती. ये अच्छी बात नहीं है. ये कार्टून देखिए, ये डॉक्टर सुन रहे हैं जो पेशेंट बोलते हैं. सुनना, कान बड़ा कान रहना चाहिए, सुनना चाहिए और पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए. ये फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकंड कंपोनेंट है मैमोग्राम, यानी स्तन के एक्सरे. ये डिजिटल मैमोग्राम है और ये 3D मैमोग्राम है. जैसा नाम ही बताता है, 3D मैमोग्राम मल्टीपल 3D इमेजेस से ब्रेस्ट को एक्सरे करते हैं. और ये मच मोर इफेक्टिव, ये लेटेस्ट रिवोल्यूशनरी एडवांस है, मच मोर इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अर्ली कैंसर और फॉल्स पॉजिटिव रेट को कम करते हैं और मोर कंफर्टेबल रहते हैं बहनों जब करवाते हैं. बहुत लोग समझते मैमोग्राम अगर करे तो 100% एक्यूरेट है. 100% कोई टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है, 85% ही एक्यूरेट है. क्यों? क्योंकि थोड़े कैंसर्स बहुत डिफिकल्ट है देखने में, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. क्योंकि लॉबुलर कैंसर मुश्किल है कभी कभी मैमोग्राम में दिखना. दूसरा है, जो पढ़ रहे हैं मैमोग्राम वो भी मिस कर सकते हैं. और हमारे यहां थोड़े डॉक्टर्स भी है, ये अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सेकंड कंपोनेंट का. ये वैल्यू एडिशन होता है मैमोग्राम से. ये मैमोग्राम में नहीं दिखे हैं वो भी हम देख सकते हैं और वो अल्ट्रासाउंड के जरिए कोर नीडल बायोप्सी के लिए गाइड भी है. और जब कैंसर होता है, रेडियोलॉजिस्ट केवल स्तन को ही नहीं, स्तन के आसपास जो आर्मपिट है वहां पे लिम्फ नोड्स को भी हम एग्जामिन करते हैं. और अगर एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स अगर हो तो वो लिम्फ नोड्स को हम नीडल बायोप्सी, कोर नीडल बायोप्सी करते हैं. सो ये तीसरी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप देख रहे हैं काला चीज जो है कैंसर है, सफेद चीज जो है वो नीडल है, कोर नीडल बायोप्सी. इससे 100% हमको कैंसर है या नहीं है पता कर सकते हैं. मैं भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो FNAC बोलते हैं, वो नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उससे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आने का संभावना है, इनएडिक्वेट रिपोर्ट आने का संभावना है. सो कैंसर नहीं होते हुए भी बहुत बहनों और माओ को स्तन भी निकाल दिया, ये मैं देखा है मेरे प्रैक्टिस में. तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं कोर नीडल बायोप्सी करवाना ही है। ये बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है, ये दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज है, ये पिंक कलर में इल्यूमिनेट हुआ है। जब सन कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म होता है, क्या करना, ट्रीटमेंट करने चाहिए? नहीं, काउंसलिंग, परामर्श बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट को डॉक्टर्स ने बात नहीं की तो पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस होते हैं, बहुत एंग्शियस होते हैं, और जरूरन कम्युनिकेशन जो है वो एक डिस्टिंक्ट आर्ट है। मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लैंग्वेज में मैं बताना चाहिए, मेरे लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कैंसर जब होता है लोग समझते, वो महिला समझती है, मैं जी पाऊंगा, मैं कब मर जाऊंगा और मेरा स्तन चले जाएगा, ये कैंसर के ट्रीटमेंट्स कितने हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा क्या है, मुझे कुछ ऑप्शंस है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, या कुछ इंपैक्ट होता है ये ट्रीटमेंट, ये सब प्रश्न डॉक्टर पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काउंसलिंग, बातचीत, इनर कॉन्फिडेंस देना ड्यूटी है। क्योंकि हम कैंसर को कभी कभी क्योर कर सकते हैं, कभी कभी ज्यादा तक रिलीव कर सकते हैं, मगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंफर्ट करना, पेशेंट को काउंसलिंग देना, तसल्ली देना बहुत बहुत आम है। मैं आप एक बार बताना चाहता हूं, बहुत लोग समझते हैं ग्रेड, कैंसर ग्रेड क्या है, कैंसर स्टेज क्या है। ग्रेड है कितना फास्ट कैंसर बढ़ता है, ग्रेड वन है स्लो ग्रोइंग, ग्रेड थ्री है फास्ट ग्रोइंग। स्टेज है कैंसर कहां फैल गया है, कैंसर अगर छोटा है तो स्तन में रहता है और आर्मपिट में रहता है। जब स्तन के कैंसर बहुत बढ़ जाता है और स्प्रेड होता है लिवर को, लंग को, बोन को, ब्रेन को, जब स्प्रेड होता है वो एडवांस स्टेज है, स्टेज थ्री स्टेज फोर है। तो भाई और बहनों, ग्रेड है ये पोटेंशियल, अगर कैंसर हो ये स्प्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको ग्रेड बोलते हैं। स्टेज माने कैंसर कहीं फैला है या नहीं फैला है, स्टेज बोलते हैं। जब कैंसर निर्धारण होता है एक आदमी ट्रीट नहीं करता है, एक पूरा टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जो सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, ब्रेस्ट केयर नर्स, सब मिलके ये कैंसर पूरा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को कैंसर है, कैसे कैंसर है, नलिकाएं में आया हुआ डक्टल कैंसर है या लॉब्यूल्स में शुरू हुआ लॉबुलर कैंसर है, दूसरा कैंसर साइज कितना है, बड़ा है या छोटा है, तीसरा मैं जो बोला कैंसर ग्रेड क्या है, स्लो ग्रोइंग है ग्रेड वन है, फास्ट ग्रोइंग है ग्रेड थ्री है, और कैंसर हार्मोन रिसेप्टर, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और थोड़े कैंसर्स को हर टू माने एक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन होने के लिए होते हुए कैंसर आ सकता है, ये हर टू पॉजिटिव है या नहीं है, और स्टेज क्या है, ये पूरा के पूरा हमको ट्रिपल असेसमेंट में पता चलेगा। और इसके मुताबिक फाइव टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, एक जो है शस्त्र चिकित्सा है, जहां ब्रेस्ट को निकाला जाता है या ब्रेस्ट को कंजर्व करते हुए लंपेक्टमी करते हैं, और लिम्फ नोड्स को भी, थोड़े लिम्फ नोड्स को निकालते हैं सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं, या पूरे लिम्फ नोड्स को निकालते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस बोलते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी, जो दवा और कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ये आईवी ड्रिप में और कीमोपोर्ट में देते हैं। तीसरा जो है रेडियोथेरेपी है, जो करंट ट्रीटमेंट 3 हफ्ते या 5 हफ्ते देते हैं। फोर्थ है टैबलेट थेरेपी, जो 5 या 10 साल देते हैं। और फाइनली टारगेटेड थेरेपी, जिसमें हर टू ओवर एक्सप्रेशन होता है, एंटी हर टू थेरेपी देते हैं। सबको सब अवसर नहीं है, थोड़े लोग को जिस सर्जरी अवसर है और एंडोक्राइन थेरेपी अवसर है, थोड़े लोग को सब अवसर होगा। किसको क्या देना है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तय करेगा। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट को जब निकाल देते हैं वो बहुत सारे साल जीते हैं कंपेयर टू अगर ब्रेस्ट को रखकर जिस लंपेक्टमी करते हैं। ये बहुत बड़ी मिथक है भाई और बहनों। मैस्टेक्टमी या लंपेक्टमी सर्वाइवल सिमिलर होता है और एडवांसेस ऑफ ट्रीटमेंट में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी आकर ये ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी यानी ब्रेस्ट को रखते हुए स्तन के लंप को निकाल के जहां डिफेक्ट हुआ वो रिप्लेसमेंट, वो डिफेक्ट को फिल करने का प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स आए हुए हैं और स्तन कैंसर के वाइड लोकल एक्सिशन यानी लंपेक्टमी नंबर ऑफ पीपल जो करवा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है पूरा वर्ल्ड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, ये राजभवन है हमारे हैदराबाद के, राजभवन है। हैदराबाद इज द ओनली सिटी, अकेला नगर है पूरा देश में जो स्तन कैंसर जागृति में पिंक कलर इल्यूमिनेट होता है। 5 साल से लगातार कोविड जब शुरू हुआ 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 और 24, 5 years इल्यूमिनेट हुआ है। लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक जो है, स्तन कैंसर को हम क्या रोक सकते हैं? स्तन कैंसर को स्ट्रिक्टली हम रोक नहीं सकते, मगर हम रिस्क को ज्यादा तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात जो है, वजन को काबू में रखना है। हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े हफ्ते पहले मन की बात में उन्होंने बहुत एम्फेसिस करे हैं कि ओबेसिटी राइजिंग प्रॉब्लम है हमारे देश में, इसको हम टैकल करना है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज हर दिन 30 मिनट जरूर करना है। तीसरा है प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्थी डाइट लेना है। फोर्थ है जरूरन ब्रेस्ट फीडिंग करना है और 6 months मिनिमम करना है। कितना ज्यादा करे उतना अच्छा होता है। और स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना है और अल्कोहल लिमिट में रखना चाहिए। और फाइनल कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्या है? ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक एक्सरे है ब्रेस्ट का और ये स्क्रीनिंग जो है कैंसर को स्तन में बहुत छोटी जब होता है, जब हम डिटेक्ट करने का संभावना है। और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब छोटा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर को हम बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, स्तन को भी नहीं निकालते हुए ब्रेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत जान बच सकता है। ये देखिए, ये 40 साल के एक लेडी है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर उन्होंने ये जागरूकता प्रोग्राम सुनकर, ऐसी मंच में जो जागरूकता प्रोग्राम सुनकर हमारे सेंटर को आई जस्ट स्क्रीनिंग मैमोग्राम के लिए, और इनमें एक छोटा कैंसर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब इतना छोटा है ये कैंसर बढ़ने के लिए बहुत साल लगेंगे और ये महिला को बहुत बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ। ऐसे ही और एक महिला है, 50 साल के बाद आई है। ये महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। ये बात सुनकर कि स्क्रीनिंग करना है वो आई है। देखिए, छोटा कैंसर हम डिटेक्ट करे हैं, जब इतना छोटा कैंसर डिटेक्ट करते हैं भाई और बहनों, ये कैंसर को हराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इनको ओल्ड एज से प्रॉब्लम्स होगा मगर कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे 2 प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग, डॉक्टर साहब मुझे गांठ नहीं है, क्यों मैमोग्राम करवा रहे हैं? गांठ नहीं होना चाहिए। अब मैमोग्राम है स्क्रीनिंग का, जब महिला या डॉक्टर गांठ महसूस नहीं करते हैं जब स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और, एक बहुत एजुकेटेड लेडी ने मुझे पूछी है थोड़े दिन पहले, डॉक्टर साहब मुझे मैमोग्राम हो गया है लास्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर क्यों करवाना बोल रहे हैं, हो गया कैंसर नहीं है फिर क्यों करवा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। भाई और बहनों, मैमोग्राम अर्ली डिटेक्शन करता है, प्रिवेंट नहीं करता है। ये अच्छी बात है कि आप स्क्रीनिंग करवाएं, कैंसर नहीं है, मगर नेक्स्ट ईयर कैंसर आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, तो इसीलिए जरूरन स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग करे तो हर आदमी कर सकते हैं, हर महिला नहीं, 40 साल के बाद ही स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। क्या स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है? नहीं, स्क्रीनिंग प्रिवेंट नहीं करता है, अर्ली डिटेक्शन होता है। तो भाई और बहनों, क्यों बहुत लोग, एजुकेटेड लोग भी क्यों संकोच करते हैं मैमोग्राम को जाने के लिए? दो कारण मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब मैमोग्राफी अगर करें तो रेडिएशन होता है तो नहीं करना चाहिए। यह गलत है, रेडिएशन मैमोग्राफी से बहुत 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 कम होता है। जैसा है हमारे सराउंडिंग एरियाज में बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, 2 महीने के बैकग्राउंड रेडिएशन एक मैमोग्राम से होता है। और मैमोग्राम करवाने से इतना छोटा जो कैंसर मैं बताया अगर डिटेक्ट करे तो कितने जाने बचा जाएंगे। सो ये गलत है, ये मिथक है। दूसरा कारण पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है अगर मैमोग्राम ठीक से नहीं करे। जहां सेंटर को आप जाते हैं रेडियोग्राफर ट्रेनिंग अच्छा नहीं होता है, अच्छे नहीं करे तो जरूरन डिस्कम्फर्ट होता है। ये बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत क्लोज है मेरे हार्ट को, क्योंकि 18 ईयर से मैं ये हॉस्पिटल किम्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूं, मुझे यहां काम करने का मौका मिला। और ये हमारे हॉस्पिटल भी 14 फ्लोर्स ये पिंक कलर में इल्यूमिनेट होते हुए आप देख रहे हैं। भाई और बहनों, उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन जो मेरे मां के नाम पे 18 ईयर्स बैक शुरू करे हैं, ये निरंतर हम कोशिश करे हैं ऐसे मंच पे और बहुत सारे मंच पे कि कैंसर एक छुपा हुआ मुद्दा से एक कॉमनली डिस्कस्ड इश्यू ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बहुत कोशिश करे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2017 में शुरू करे हैं, जब मैं इंस्पायर होकर फाउंडेशन ने पूरा प्रपंच में पहली बार एक मोबाइल ऐप में रूप में एक ब्रेस्ट हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। ये केवल इंग्लिश में नहीं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, गुजराती, बंगाली, मराठी, ओरिया, असमीस में है। ये क्या है? सब चीज जो मैं बताया है सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, कैंसर के बारे में नहीं, पूरे बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज के बारे में भी जानकारी है। और सब इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ABCs ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ, आप नोट कर लिए ABCs ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ। और ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते, गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? और ये ऐप जो है 2017 में हमारे देश के माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ने आकर लॉन्च किए हैं। लॉन्च करने के बाद ये बताए हैं कि डॉक्टर साहब आपको मेरा चेहरा ये कैंसर के बारे में अगर यूज करना है तो मैं आपके साथ हूँ। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, और उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। ट्वीट करने के बाद बहुत लोग, हजारों में ये ऐप को डाउनलोड कर बेनिफिट हुए हैं। और ये फाउंडेशन का पिनेकल मोमेंट है जब अमिताभ बच्चन जी ने उनके कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में 2022 में ये प्रश्न सेलिब्रिटीज यानी काजोल और रेवती से पूछा, अक्टूबर में जागृति के लिए कौन से मॉन्यूमेंट्स पिंक कलर, कौन से डिसीज के लिए पिंक कलर में इल्यूमिनेट करें, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, पोलियो या ब्रेस्ट कैंसर। और बहुत खुशी की बात है कि दोनों ने सही जवाब दिया है। और आखिरी में थोड़े फ्यू मंथ्स अगो मेरा बहुत खुश नसीब हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, 20 मिनट बातचीत करें, ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे अवेयरनेस बढ़ सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैसा रोबस्ट कर सकते हैं, ये बातचीत की है। उन्होंने फाउंडेशन जो 18 ईयर्स से निरंतर कृषि करे हैं वो बहुत बहुत इम्प्रेस हुए हैं। और उन्होंने मीटिंग के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया है और ये एक हाई पॉइंट है मेरे लाइफ में। सो भाई और बहनों, इन कंक्लूजन मैं बताना चाहता हूं कि हम कैंसर को पूरी तरह रोक नहीं सकते, हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते। अगर माओ बहनों कोई चेंजेस तन में हो, आप प्लीज ये लेक्चर सुनने के बाद आप निर्लक्ष नहीं करना है, डॉक्टर को संप्रदित करना है। और जो लोग 40 साल के ऊपर है, हर साल जरूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना चाहिए, इससे बहुत बहुत जाने बच जाएंगे। आप सोचना है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ है और हम सब लोग को रिमाइंड करना चाहिए कि घर की लक्ष्मी बहुत बहुत आम है, इंपॉर्टेंट है। महिला जो है घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तबीयत अगर अच्छी है तो हमारे फैमिली के तबीयत अच्छी रहेगी, उनकी तबीयत अगर अच्छी नहीं है तो फैमिली की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। तो यहां पे बहुत पुरुष है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हमारे घरों में हमारी मां, हमारे बहन, हमारे स्पाउस, हमारे सिस्टर्स, हमारे आंट्स, हमारे मित्र जो भी है महिला, उनको आप जरूरन साल में एक बार जरूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम गिफ्ट दीजिए। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल में साड़ी दिया जाता है, स्वीट्स दिया जाता है, आप वो भी दीजिए, मगर आपके घर में जो महिला है उनको मैमोग्राम गिफ्ट कीजिए। और ये अवेयरनेस सेशन क्लोज करने के पहले मैं जस्ट 5 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप सुने हैं या नहीं सुने हैं, मुझे पता करने के लिए आप हाँ या ना बोलना है। एक है, सन कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, जो हाँ है हाथ उठाइए, ना है हाथ उठाइए, कोई भी नहीं उठाए, वेरी गुड। सन कैंसर पुरुषों में नहीं होता है, सही है ऐसा? सन कैंसर पुरुषों में भी होता है, वेरी गुड। सन में जब दर्द होता है, दर्द से गांठ होता है, वो कैंसर का सिम्टम है, यस नहीं? नहीं जो है हाथ उठाइए, वेरी गुड। दर्द रहित गांठ कैंसर हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, मैमोग्राम क्या स्क्रीनिंग मोडालिटी अर्ली डिटेक्ट कर सकता है? यस, वेरी गुड। नो, ओके। काउंसलिंग जो है पेशेंट के लिए वाइटल है, परामर्श करना वाइटल है, यस ट्रीटमेंट करने के पहले यस वेरी गुड और इसी से मैं ये अवेयरनेस कार्यक्रम पूरी करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी हेल्थ हो आप खुश हो और समस्त सुखिनो भवंत समस्त लोका सुखिनो भवंतु नमस्कार ओम शांति
बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर साहब को आपने बहुत बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में बीमारी के बारे में हम सबको स्पष्ट किया कि बीमारी के कारण क्या हैं हम कैसे कैसे हम इसकी पहचान करें कब हमें डॉक्टर के पास जाना है क्या क्या जांच कराएं फिर इसके क्या इलाज हैं और कैसे ये इलाज किया जाता है हमारे मध्य में हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी भी आ चुके हैं जो रमा कुमारी उसके एडिशनल चीफ हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है और अभी हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी डॉक्टर साहब का और मिस्टर ऋषिनाथ जी जो सभा में उपस्थित हैं आपका फेलिसिटेशन करके सम्मान करेंगे
It is my greatest privilege and pleasure to invite Mr. Rishinath, who is the adjudicator for the Guinness World Records for the largest breast cancer awareness session, to please come on stage.
Good evening once again. Everybody must be very eager to know what the results are for the Guinness World Record attempt. Just a brief introduction and a brief background what took place today. The record attempt was for the largest breast cancer awareness. The largest breast cancer awareness lesson was attempted by Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation. KIMS Usha Lakshmi Center for Breast Diseases and the Brahma Kumaris. And as you were all there, it was wonderfully delivered by Dr. Raghuram, very elucidating lesson, and it was very important for everyone to have experienced this particular world of information. Without further ado, I would like to say that the minimum requirement was 1,919. Do you think we have achieved the new Guinness World Records record? Are you sure? What we have today is in the region. Now the precise number is yet to come in, but we know this is in excess of 5,000 people. So congratulations, a new Guinness World Records record has been made here. And I would like to now present the certificate.
Dr. Raghuram ji ne Guinness World Record banaya hai aur ye unko abhi pradan kiya ja raha hai kyunki 5000 se adhik sankhya के होने पर ये रिकॉर्ड बना है ये लार्जेस्ट ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप हुआ है आपका और अभी मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध है कि डॉक्टर साहब का और ब्रदर श्रीनाथ जी का फेलिसिटेशन करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, शॉल भेंट करेंगे। ऋषिनाथ जी जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक मंडल में से हैं, आपका भी सम्मान किया जा रहा है।